राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रथ श्री श्रीमतीस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला फ्रांसिस्कन फाउंडर आचार्य सेव द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री श्री गौरताई भगवान की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांग। आपने हैप्पी दिवाली कहा ना, तो मैं सोचता हूँ आपको हम कहें हैप्पी भागवत। हैप्पी भागवत, आपको भागवत इतना सुख प्रदान करे कि हमेशा आप बैठो भागवत में।
स्पेशल दिवाली का
है, ये भागवत का सत्संग ही असली है।
दिवाली का गूढ़ अर्थ समझा दीजिए, अंधकार दूर करने वाला प्रकाश
है। इसके कई कारण हैं दिवाली के, बाद में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, पहले अपना मुख्य जो विषय है, मुख्य कार्य वो करें। अभी जाप नहीं, हाथ बाहर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध अध्याय 10, यमनार्जुन वृक्षों का उद्धार। तो पिछले जो पाठ हुआ था, तो किसी को पता है क्या कथा चल रही है? पिछले कक्षा में कौन कौन लोग थे, हाथ उठाओ, कौन कौन लोग थे पिछली बार कथा में? कोई नहीं, बस दो। अच्छा हम बताओ क्या। माता यशोदा ने कृष्ण को रस्सी में बांधा, दो अंगुल छोटी पड़ रही थी, उसके आगे नहीं 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 आपने सुना नहीं, वो तो आपने कुछ देखा है, वो ऐसा नहीं है जैसा इसमें लिखा है, जैसा इसमें लिखा है वैसा है ना, वो नहीं। तो भगवान बन गए और माता यशोदा अपने काम में लग गई, और भगवान ने देखा यमलार्जुन वृक्षों को, है ना। तो फिर सुखदेव गोस्वामी इनके पिछले जन्म की बात बता रहे हैं कि पिछले जन्म ये जो दो वृक्ष हैं ये क्या हैं, नलकुबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं, है ना। तो बहुत धनी हैं, इस कारण से उनमें जो है घमंड है, और स्त्रियों के साथ में नग्न होकर के गंगा जी में क्रीड़ा कर रहे हैं, और नारद जी वहां से निकले तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया, वस्त्र भी नहीं धारण किए और प्रणाम भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि स्त्रियों के बीच में दो हीरो हैं, है ना। तो हीरो की जो है ना कैसी, मतलब फिर हीरोपना कैसे रहेगा अगर नारद जी को प्रणाम करेंगे, तो वे हीरो कैसे हुए स्त्रियों के बीच में हीरो बनने के लिए है? हाँ, तो वही उसी को मैं फिर से बता रहा हूं।
इस कारण से वे जो है प्रणाम नहीं कर रहे हैं, वस्त्र नहीं धारण कर रहे हैं, क्योंकि फिर तो वो डरे हुए माने जाएंगे। तो हम डरते नहीं है, हीरो हैं। तो स्त्रियों के कारण जो है ना व्यक्ति के अंदर ये जो है ना एक बात आ जाती है मिथ्या अहंकार कि जिसमें कि वो फिर अपराध करता है। तो फिर नारद जी ने विचार किया कि इनको मैं शराब शाप दूंगा, इनको मैं शाप दूंगा। और नारद जी विचार कर रहे हैं क्यों शाप दूंगा, क्योंकि परिस्थिति का प्रश्न भी था कि नारद जी तो जो ना बहुत शांत महात्मा है, तो शांत महात्मा तो कभी गुस्सा नहीं करते हैं। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि गुस्सा करने का भी एक कारण होता है, उचित कारण होता है। और क्या उचित कारण है, नारद जी उस कारण पर विचार कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्ति वारुणी पीकर यानी शराब पीकर और अपनी इंद्रियों को वश में ना रखने के कारण स्वर्ग के ऐश्वर्य से अंधे हैं, स्त्रियों के प्रति अनुरक्त हो चुके हैं, मैं इनकी झूठी प्रतिष्ठा छीन कर रहूंगा। तदहम मत्तयोर माध्याम वारुण्या श्रीमद अंधयो तमो मदम हरेश्यामी स्त्रणयो रजेतात्मनो। तात्पर्य में रूपा लिखते हैं, जब कोई साधु किसी को डांटता या दंड देता है तो मैं बदले की भावना से ऐसा नहीं करता। महाराज परीक्षित ने पूछा था कि नारद मुनि में किस प्रकार बदले की भावना उठी। क्या बदले की भावना, अच्छा मुझे नमस्कार नहीं किया, अच्छा मैं देखता हूं तुमको, तुम उसको प्रणाम नहीं करते, मेरी पूजा नहीं करते, अभी मैं तुमको दिखाता हूं क्या मजा चखाता हूं, ये नहीं है। नारद जी इस प्रकार विचार करते हैं, किंतु ये तमा नहीं था, क्योंकि नारद मुनि को पूर्ण ज्ञान था कि इन दोनों भाइयों का हित किसमें है। इसलिए उन्होंने विचार किया कि इन्हें किस तरह मार्ग पर लाया जाए। वैष्णवजन अच्छे चिकित्सक होते हैं, जो वैष्णव है वो अच्छे चिकित्सक यानी डॉक्टर होते हैं। तो एक खूनी के हाथ में चाकू है और डॉक्टर के हाथ में भी चाकू है, चाकू वही है। डॉक्टर जब चाकू मारता है तो जीवन की रक्षा करने के लिए, और जो खूनी चाकू मारता है तो जीवन नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए। उसी प्रकार से नारद जी ने उनको संकट में डाला, लेकिन उनके जीवन की रक्षा के लिए, उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए। वे जानते हैं कि भव रोग से मनुष्यों को कैसे बचाया जाए, अतः वे कभी भी तमोगुण नहीं होते। अब नारद जी विचार कर रहे हैं, ये दोनों युवक नलकुबर और मणिग्रीव भाग्य से महान देवता कुबेर के पुत्र हैं, किंतु मिथ्या प्रतिष्ठा और शराब पीने से उत्पन्न उन्मत्तता के कारण ये इतने पतित हो चुके हैं कि नंगे होकर भी ये नहीं समझ पा रहे कि वे नंगे हैं। अतः वृक्षों की तरह रहने वाले इन दोनों युवकों को वृक्षों का शरीर मिलना चाहिए, यही इनके लिए समुचित दंड होगा। फिर भी वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार के समय तक इन्हें मेरी कृपा से अपने विगत पाप कर्मों की याद बनी रहेगी। अब वृक्ष, किसी को वृक्ष का शरीर मिल जाता है तो फिर वो तो भूल जाता है कि वो क्या है। वृक्ष तो इस समय भी उसको पता नहीं है कि वो क्या है ना। लेकिन नारद जी कितनी कृपा करें कि वृक्ष रूप में इनको इस समय की भी स्थिति याद रहेगी और पिछली स्थिति कि किस कारण इनको वृक्ष बनना पड़ा ये भी याद रहेगा, इन्हें याद रहेगा। यही नहीं, मेरी विशेष कृपा से देवताओं के सौ साल यहाँ के 36,000 साल, तो देवताओं के 100 साल के बाद ये भगवान का दर्शन कर सकेंगे और अपना असली स्वरूप प्राप्त कर सकेंगे। यदि मोलोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमाप्लुतो नाविवाससम आत्मानम विजानीतम सुदुर्मदम अतोर्हता स्थावरताम स्याताम नैवम यथा पुनः स्मृति श्याम मत प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहं वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्ये सरच्छते वृतेश्वर लोकतां भूयो लब्धे भक्ति भविष्यतां। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके देवर्षि नारद अपने आश्रम को लौट गए, नर नारायण आश्रम को चले गए और नलकुबर और मणिग्रीव दोनों अर्जुन वृक्ष बन गए। इनको यमल अर्जुन क्यों कहा जाता है? अर्जुन के दोनों वृक्ष बन गए, ये यमल अर्जुन क्यों कहा जाता है? यमल का मतलब जुड़वा। कई बार दो पेड़ एक दूसरे जुड़े होते हैं ना, है ना, तो जुड़े क्यों है? तो पहले भी इनका कुछ संबंध था, है ना, इसलिए वृक्ष के रूप में भी वो साथ साथ पैदा हुए। तो जुड़वा इसलिए यमल कहते हैं, यमल माने जुड़वा, यमल अर्जुन। एवं मुक्त्वा स देवर्षि गतो नारायण आश्रमम् नलकूबर मणिग्रीवां वासतुर यमलार्जुनम्। यमलार्जुनम् तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, आज भी अनेक जन्मों जंगलों में अर्जुन वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी छाल हृदय व्यथा होने पर डॉक्टरों द्वारा दवाई तैयार करने के काम आती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष होने पर भी चिकित्सा विज्ञान के लिए छाल निकालने पर उन्हें सताया जाता है। जब छाल निकाली जाती पेड़ की तो कष्ट होता है पेड़ को। तो नारद के वचनों को सत्य बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे उस स्थान पर गए जहां दोनों अर्जुन वृक्ष खड़े थे। अब भगवान धीरे धीरे गए, तो पता कैसे गए? धीरे धीरे खड़े होके गए या बैठ करके? हाँ, घुटनों पर रेंगते रेंगते धीरे धीरे वहां पहुंचे। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के दास हैं, तो भक्त ने चूंकि उसको श्राप दिया है, वरदान दिया है, तो उनको तो पूरा करना पड़ेगा, इसलिए अपना धीरे धीरे जा रहे हैं उधर, और बंधे हैं उखल से, तो धीरे धीरे उखल भी पीछे पीछे चल रहा है उनके, है? वो दास का दास है उखल। भगवान नारद जी के दास हैं, तो धीरे धीरे जा रहे हैं, और उनका दास है, धीरे धीरे वो भी पीछे पीछे जा रहा है उखल भी। तो धीरे धीरे भगवान उन वृक्षों के पास गए। ऋषेर भागवत मुख्य सत्यम कर तुम बचो हरि जगाम सन के सत्र यत्राताम जमेल अर्जुन। अब भगवान विचार करते हैं, यद्यपि ये दोनों युवक अत्यंत धनी कुबेर के पुत्र हैं और उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, परंतु देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हैं, इसलिए जैसा उन्होंने चाहा अतएव मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। नारद जी चाहते हैं इसलिए मैं करूंगा, नहीं तो भगवान को कोई जरूरत नहीं है इनका उद्धार करने की। जिसको जो नरक में जाना है जाए नरक में, भगवान को क्या जरूरत है? लेकिन चूंकि भक्त से टकरा गए और भक्त ने उनको साथ दे दिया, वरदान दे जो भी दे दिया, अब भगवान बंधे हैं, भक्त के वचन से बंधे हैं, इसलिए भगवान इनका उद्धार कर रहे हैं, नहीं तो भगवान को कोई जरूरत नहीं थी इनका उद्धार करने की। देवर्षि मे प्रियतमो यदि मोम धनदात्मज तथा साधयिष्यामि यद्गीतं तन्महात्मनां। हाँ, तात्पर्य प्रभुपाद यही लिखते हैं कि कोई कितना भी धनी हो, इन भगवान को कोई मतलब नहीं है कि भाई बहुत धनी है इसलिए इनकी इनके लिए कुछ करूं, नहीं। लेकिन नारद मुनि की इच्छा थी कि वासुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन करें, अतः भगवान ने अपने प्रिय भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहा। इस तरह सोचकर कृष्ण तुरंत ही दो अर्जुन वृक्षों के बीच प्रविष्ट हुए, जिससे वह बड़ी उखली जिससे वे बंधे थे वो तिरछी हो गई और बीच में फंस गई। इत्यंतरे अर्जुनयो कृष्णस्तु यमयोर्ययो आत्मनिर्वेश मात्रेण त्रियंगतम मुलोखलम। पेट से बंधी उखली को बलपूर्वक अपने पीछे घसीटते हुए बालक कृष्ण ने दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया। अब बालक जैसे चेष्टा करता वैसे ही कृष्ण चेष्टा कर रहे हैं, मतलब जैसे बालक को पता थोड़ी होता है कि पीछे क्या रुकावट है, तो अपना आगे चलता है ना, और कहीं रुकावट हो रही है तो वो नहीं जानता, वो तो अपनी कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की। वैसे कृष्ण भी जो है ना, वो नहीं सोच रहे हैं कि उखल बंधा है, उखल फंसा है तो कुछ कारण है, और बंधे हुए हैं तो अपना वैसे ही खींचते जा रहे हैं, और नहीं खींच रहा है तो थोड़ा जोर लगा दिया, तो थोड़ा जोर लगा दिया तो दोनों पेड़ गिर गए। अब वो दो पेड़ क्या पुराने थे? पुराने तो थे, लेकिन वो वैसे पुराने नहीं थे कि सूखे हों कि कमजोर हों, वो पुराने थे तो बहुत मजबूत थे, हरा भरा पेड़ जितना पुराना होता उतना ज्यादा मजबूत होता है, वो हरे भरे पेड़ थे और 36,000 साल पुराने पेड़ थे तो सोचो कितने मजबूत होंगे, है ना। लेकिन कृष्ण की थोड़ी सी शक्ति से जो ना वो उखड़ गए। परम पुरुष की महान शक्ति थे, दोनों वृक्ष अपने तने पत्ते और टहनियों समेत बुरी तरह से हिले और तल तलाते हुए भूमि पर गिर पड़े। बालेन निष्कर्षे तान गुलु खलम तन दामोदरेन तरसो कलितां गिरिबंधम निष्पेत तुहु परम विक्रमिताति वेप स्कंद प्रवाल विटपो कृत चंड शब्दो। कृष्ण की ये लीला दामोदर लीला कहलाती है। ये दामोदर महीने चल रहा है तो इसी महीने में कार्तिक के महीने में ही ये लीला हुई थी, तो ये सौभाग्य से ये लीला इस समय चल भी रही है, हम लोग पढ़ रहे हैं। जब से कार्तिक शुरू हुआ है तब से ये लीला भी शुरू हुई है। अब हुआ क्या कि कृष्ण अकेले थे, है ना। हाँ बच्चे साथ में थे, वो खेल रहे थे, लेकिन जो बड़े लोग थे वो तो कोई नहीं थे वहां। तो जिस स्थान पर दोनों अर्जुन वृक्ष गिरे थे वहीं पर दोनों वृक्षों से महान पुरुष अग्नि के समान तेजस्वी निकले, बाहर निकले और उनका तेज चारों ओर प्रकाशित हो रहा था, दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा था उन वृक्षों से जो पुरुष निकले। वो पुरुष कौन है? नलकुबर और मणिग्री। उन्होंने नतमस्तक होकर कृष्ण को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर अब वचन कहा, हाथ जोड़कर ये कहा, तत्र स्त्रिया परमया ककुभा स्फुरन्तो सिद्धा वपेत कुजयोरे वैजाते वेदां कृष्णं प्रणम्य शृणक सा शिरसा अखिल लोकनाथं बद्धांजलि विरजसा विजयमूचतुस्म। हे कृष्ण आपकी योग शक्ति अचिंत है, आप सर्वोच्च आदि पुरुष हैं, आप समस्त कारणों के कारण हैं, आप पास रहकर भी दूर हैं और भौतिक दृष्टि से परे हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि आप सर्वे सर्वा हैं, ये विराट विश्व स्थूल और सूक्ष्म रूप में आपका ही स्वरूप है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन तमाद्या पुरुष पर व्यक्ता व्यक्त मिदम विश्वम रूपम ते ब्राह्मणा विदुः। आप हर वस्तु के नियंता हो, आप हर जीव के शरीर हो, प्राण अहंकार और इंद्रियां हो, आप परम पुरुष हो, अक्षय नियंता हो, विष्णु हो, आप काल हो, कारण हो, तीनों गुणों वाली भौतिक प्रकृति हो, आप इस भौतिक जगत के आदि कारण हो, आप परमात्मा हो, आप हर एक जीव के हृदय की बात को जानने वाले हो। तुम्हें कहा सर्वभूतानां देहा स्वात्मेन्द्रियेश्वर त्वमेव कालो भगवान विष्णुरव्यय ईश्वर त्वं महान प्रकृति सूक्ष्मां रजा सत्त्व तमोमयी त्वमेव पुरुषोध्यक्षं सर्व क्षेत्र विकार बात नहीं। आपको शोभा देता है कि यहां कथा में बैठ करके बात कर रहे हैं। हे प्रभु, आप इस सृष्टि से पहले भी विद्यमान थे, आप इस जगत में भौतिक गुणों वाले शरीर में अतः इस जगत में भौतिक गुणों वाले शरीर में बंदी रहने वाला ऐसा कौन है जो आपको समझ सके? ये बद्ध आत्मा कैसे आपको समझ सकती है? जब तक आप ना समझाए तब तक कौन आपको जान सकता है? गुह्यमाणे स्तमग्राह्यो विकारे प्राकृतेर्गुणे कौन विहार हति विज्ञातम प्राक सिद्धम गुण समृत। आप ही अपनी ही शक्ति से आच्छादित महिमा वाले हे प्रभु, आप भगवान हो, आप सृष्टि के उद्गम हो, संकर्षण हो, चतुर्व्यूह के उद्गम वासुदेव हो, आप सर्वस्व होने से पर ब्रह्म हो, अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्मज्योतये गुणच्छन्न
महिमने ब्रह्मणे नमः।
द्रौपद तात्पर्य लिखते हैं, कृष्ण को विस्तार से जानने का प्रयास करने से अच्छा है कि उनको सादर नमस्कार किया जाए, क्योंकि वे हर वस्तु के उद्गम हैं, सर्वस्व हैं। क्योंकि हम प्रकृति के गुणों से ढके हैं, अतः जब तक हमारे समक्ष भी प्रकट ना हो तब तक हमारे लिए उन्हें समझ पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए यही स्वीकार करना अच्छा है कि वे सर्वस्व हैं और हम उनके चरण कमलों में क्या करें, चरण कमलों में नमस्कार, हाँ नमस्कार करें। आप मत्स्य हो, कूर्म हो, वराह हो, ऐसे अवतारों में प्रकट होकर ऐसे प्राणियों द्वारा संपन्न ना हो सकने वाले कार्य करते हो, अतएव आपके ये शरीर भौतिक तत्वों से बने नहीं हैं, अभी तो आपके अवतार हैं। आप वही भगवान हो जो अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस जगत के सारे जीवों के लाभ के लिए प्रकट हुए हो। यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेषु शरीरिणः तैस्तैरतुल्यातिशयेन वीर्यैर्देहेषु संगतेन स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णो सभागेन साम्प्रतं पतिराशिषाम्। हे परम कल्याण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आप परम शुभ हो। हे यदुवंश के नियंता, हे वसुदेव के पुत्र, हे परम शांत, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। हे परम रूप, हम सदैव आपके दासों के दास हैं, अब आप हमें अपने घर जाने की अनुमति दीजिए। ये तो नारद मुनि की कृपा है कि हम आपका साक्षात दर्शन कर सके। तो कह रहे हैं हमें अपने घर जाने की अनुमति दीजिए। कहाँ घर है उनका? स्वर्ग में। अनुजानी ही नौ भूमन तवानुम चर किंकर दर्शनम नौ भगवत ऋषेरा सीद अनुग्रह। अब उनकी अंतिम प्रार्थना क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या प्रार्थना करते हैं? अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, आगे से हम जो कुछ बोलें क्या बोलें, आपका गुणगान करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें और कुछ सुने नहीं, हमारे हाथ पांव और इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगें और हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करें। हमारा सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करे क्योंकि हर वस्तु आपका विभिन्न रूप है, और हमारी आंखें आपके भक्तों का दर्शन करें। ये प्रार्थना बहुत सुंदर प्रार्थना है। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्नहम् स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनुनाम। अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कह रहे हैं, इस तरह दोनों देवताओं ने भगवान की स्तुति की। यद्यपि भगवान कृष्ण सबों के स्वामी हैं और गोकुलेश्वर हैं, किंतु वे गोपियों की रस्सियों द्वारा लकड़ी की ओखली से बांध दिए गए थे, इसलिए उन्होंने हंसते हुए कुबेर के पुत्रों से ये सब कहे। अब भगवान हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं कि मैं तो बंधा हूं और तुमको मैंने छुड़ाया है बंधन से और मुझे तुम नहीं छुड़ा सकते हो, मैंने तो तुमको छुड़ाया बंधन से, लेकिन तुम उसको इस बंधन से नहीं छुड़ा सकते हो, क्योंकि प्रेम का बंधन बहुत बहुत मजबूत है। इत्थं संकेततस्ताभ्यां भगवान गोकुलेश्वर दामना चोलु खले बद्धा प्रसन्ना है गुई है कौन। तात्पर्य प्रभा लिखते हैं, कृष्ण इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे सोच रहे थे ये दोनों देवता स्वर्ग लोक से इस लोक में गिरे हैं और बहुत समय से वृक्ष रूप में खड़े थे, इन दोनों को मैंने बंधन से छुटकारा दिला दिया, किंतु मैं स्वयं माता की रस्सियों से बंधा हूं, उनकी डांटे सह रहा हूं माता की डांट में सह रहा हूं, इनको तो मैं छुड़ा दिया, मुक्त कर दिया, डांट सहता हूं मैं, डांट खाता हूं मैं माता की, बांधा गया हूं मैं माता के दूसरे शब्दों में कृष्ण शुद्ध प्रेम के बस में, जो भक्त द्वारा कई विधियों से प्रशंसनीय है, गोपियों द्वारा डांटे जाने को अंगीकार करते हैं, डांट खाते हैं और बांधे जाते हैं गोपियों के द्वारा। अब भगवान क्या कहते हैं, इत्थं संकेतितस्ताभ्यां भगवान गोकुलेश्वरः दामना चोलु खले बद्धा प्रसन्ना है गुह्य कौन। भगवान ने कहा परम संत नारद मुनि बहुत कृपालु हैं, भगवान करें कि मेरी कृपा नहीं है, उनकी कृपा है, उन्होंने अपने साप से तुम दोनों पर बड़ा अनुग्रह किया है, क्योंकि तुम दोनों बहुत ही ऐश्वर्य से उन्मत्त होकर अंधे बन गए थे, यद्यपि तुम दोनों स्वर्ग से गिरकर वृक्ष बने थे, किंतु उन्होंने तुम दोनों पर बहुत कृपा की, मैं इन घटनाओं को जानता था। भगवान कहते हैं हाँ, नहीं तो क्या होता, अगर नारद जी साप नहीं देते तो क्या होता, नरक में जाते, यमराज का दंड है ना, तो कोई सोचेगा अरे भाई नारद जी ने तो कृपा नहीं करी, उनको माफ कर देते हैं, साप क्यों दिया, अगर माफ कर देते तो यमराज के दंड से नहीं बचते, है कि नहीं, तो ये जो है ना बहुत कृपा है, और भगवान की कृपा मिल गई, उनका जो है ना उद्धार हो गया। ज्ञातम मम पुर वेतन ऋषिना करुणात्मनो श्रीमदांधयोर वाग्भीर विभ्रंसो अनुग्रह कृता। जब कोई व्यक्ति सूर्य के सामने हो तो उसकी आंखों में अंधेरा नहीं होता, इसी तरह जब कोई व्यक्ति साधु या भक्त के समक्ष होता है तो उसका भाव बंधन छूट जाता है।
राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रस्य श्रीमद्भवाइंग्रीस अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेतलीला फ्रांसिस कॉन्फाउंडर आचार्य सेव दी होल वर्ल्ड जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांग। आपने हैप्पी दिवाली कहा ना, तो मैं सोचता हूँ आपको हम कहें हैप्पी भागवत, हैप्पी भागवत। आपको भागवत इतना सुख प्रदान करे कि हमेशा आप बैठो भागवत में।
स्पेशल दिवाली का
ये भागवत का सत्संग ही असली है। इसके कई कारण हैं दिवाली के, बाद में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, पहले अपना मुख्य जो विषय है मुख्य कार्य वो करें। अभी जाप नहीं, हाथ बाहर।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दसम स्कंध अध्याय 10, यमुनार्जुन वृक्षों का उद्धार। तो पिछले जो पाठ हुआ था, तो किसी को पता है क्या कथा चल रही है? पिछले कक्षा में कौन कौन लोग थे, हाथ उठाओ, कौन कौन लोग थे पिछली बार कथा में? कोई नहीं दो, अच्छा हम बताओ क्या। माता यशोदा ने कृष्ण को रस्सी में बांधा, दो अंगुल छोटी पड़ रही थी, उसके आगे नहीं 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 आपने सुना नहीं, वो तो आपने कुछ देखा है, वो ऐसा नहीं है जैसा इसमें लिखा है, जैसा इसमें लिखा है वैसा है ना, वो नहीं। तो भगवान बन गए और माता यशोदा अपने काम में लग गई और भगवान ने देखा यमुनार्जुन वृक्षों को, है ना। तो फिर सुखदेव गोस्वामी इनके पिछले जन्म की बात बता रहे हैं कि पिछले जन्म ये जो दो वृक्ष हैं ये क्या हैं, नलकुबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं, है ना। तो बहुत धनी है, इस कारण से उनमें जो है घमंड है, और स्त्रियों के साथ में नग्न होकर के गंगा जी में क्रीड़ा कर रहे हैं, और नारद जी वहां से निकले तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया, वस्त्र भी नहीं धारण किए और प्रणाम भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि स्त्रियों के बीच में दो हीरो हैं, है ना। तो हीरो की जो है ना कैसी, मतलब फिर हीरोपना कैसे रहेगा अगर नारद जी को प्रणाम करेंगे तो वे हीरो कैसे हुए, स्त्रियों के बीच में हीरो बनने के लिए है। हाँ, तो वही उसी को मैं फिर से बता रहा हूं, इस कारण से वे जो है प्रणाम नहीं कर रहे हैं, वस्त्र नहीं धारण कर रहे हैं, क्योंकि फिर तो वो डरे हुए माने जाएंगे। तो हम डरते नहीं है, हीरो हैं। तो स्त्रियों के कारण जो है ना व्यक्ति के अंदर ये जो है ना एक बात आ जाती है, मिथ्या अहंकार, कि जिसमें कि वो फिर अपराध करता है। तो फिर नारद जी ने विचार किया कि इनको मैं शाप दूंगा। और नारद जी विचार कर रहे हैं क्यों शाप दूंगा, क्योंकि परीक्षित का प्रश्न भी था कि नारद जी तो जो ना बहुत शांत महात्मा है, तो शांत महात्मा तो कभी गुस्सा नहीं करते हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि गुस्सा करने का भी एक कारण होता है, उचित कारण होता है, और क्या उचित कारण है, नारद जी उस कारण पर विचार कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्ति वारुणी पीकर यानी शराब पीकर और अपनी इंद्रियों को वश में ना रखने के कारण स्वर्ग के ऐश्वर्य से अंधे हैं, स्त्रियों के प्रति अनुरक्त हो चुके हैं, मैं इनकी झूठी प्रतिष्ठा छीन कर रहूंगा। तदहम मत्तयोर माध्याम वारुण्या श्रीमद अंधयो तमो मदम हरेश्यामी स्त्रणयो रजितात्मनो। तात्पर्य में रूपा लिखते हैं, जब कोई साधु किसी को डांटता या दंड देता है तो मैं बदले की भावना से ऐसा नहीं करता। महाराज परीक्षित ने पूछा था कि नारद मुनि में किस प्रकार बदले की भावना उठी, क्या बदले की भावना, अच्छा मुझे नमस्कार नहीं किया, अच्छा मैं देखता हूं तुमको, तुम उसको प्रणाम नहीं करते, मेरी पूजा नहीं करते, अभी मैं तुमको दिखाता हूं क्या मजा चखाता हूं, ये नहीं है। नारद जी इस प्रकार विचार करते हैं, किंतु ये तमा नहीं था, क्योंकि नारद मुनि को पूर्ण ज्ञान था कि इन दोनों भाइयों का हित किसमें है, इसलिए उन्होंने विचार किया कि इन्हें किस तरह मार्ग पर लाया जाए। वैष्णवजन अच्छे चिकित्सक होते हैं, जो वैष्णव है वो अच्छे चिकित्सक यानी डॉक्टर होते हैं। तो एक खूनी के हाथ में चाकू है और डॉक्टर के हाथ में भी चाकू है, चाकू वही है, डॉक्टर जब चाकू मारता है तो जीवन की रक्षा करने के लिए, और जो खूनी चाकू मारता है तो जीवन नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए। उसी प्रकार से नारद जी ने उनको संकट में डाला, लेकिन उनके जीवन की रक्षा के लिए, उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए। वे जानते हैं कि भव रोग से मनुष्यों को कैसे बचाया जाए, अतः वे कभी भी तमोगुण नहीं होते। अब महाराज जी विचार कर रहे हैं, ये दोनों युवक नलकुबर और मणिग्रीव भाग्य से महान देवरा कुबेर के पुत्र हैं, किंतु मिथ्या प्रतिष्ठा और शराब पीने से उत्पन्न उन्मत्तता के कारण ये इतने पतित हो चुके हैं कि नंगे होकर भी ये नहीं समझ पा रहे कि वे नंगे हैं। अतः वृक्षों की तरह रहने वाले इन दोनों युवकों को वृक्षों का शरीर मिलना चाहिए, यही इनके लिए समुचित दंड होगा। फिर भी वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार के समय तक इन्हें मेरी कृपा से अपने विगत पाप कर्मों की याद बनी रहेगी। अब वृक्ष, किसी को वृक्ष का शरीर मिल जाता है तो फिर वो तो भूल जाता है कि वो क्या है। वृक्ष तो इस समय भी उसको पता नहीं है कि वो क्या है, है ना। लेकिन नारद जी कितनी कृपा करें कि वृक्ष रूप में इनको इस समय की भी स्थिति याद रहेगी और पिछली स्थिति कि किस कारण इनको वृक्ष बनना पड़ा ये भी याद रहेगा, इन्हें याद रहेगा। यही नहीं, मेरी विशेष कृपा से देवताओं के 100 साल के बाद, देवताओं के 100 साल यहाँ के 36,000 साल, तो देवताओं के 100 साल के बाद ये भगवान का दर्शन कर सकेंगे और अपना असली स्वरूप प्राप्त कर सकेंगे। यदि मोलोक पालस्य पुत्रो भूत्वा तमाप्लुतो नाविवासम आत्मानम विजानीतम सुदुर्मदम अतोर्हता स्थावरताम स्याताम नैवम यथा पुनः स्मृति श्याम मत प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहं वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्ये सरच्छते ब्रतेश्वरलोकतां भूयो लब्धे भक्ति भविष्यतां। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके देवर्षि नारद अपने आश्रम को लौट गए, नर नारायण आश्रम को चले गए और नलकुबर और मणिग्रीव दोनों अर्जुन वृक्ष बन गए। इनको यमल अर्जुन क्यों कहा जाता है? अर्जुन के दोनों वृक्ष बन गए, यमल अर्जुन क्यों कहा जाता है? यमल का मतलब जुड़वा। कई बार दो पेड़ एक दूसरे जुड़े होते हैं ना, है ना, तो जुड़े क्यों है? तो पहले भी इनका कुछ संबंध था, है ना, इसलिए वृक्ष के रूप में भी वो साथ साथ पैदा हुए। तो जुड़वा इसलिए यमल कहते हैं, यमल माने जुड़वा, यमल अर्जुन। एवं उक्त्वा स देवर्षि गतो नारायण आश्रमम् नलकूबर मणिग्रीवां वासतुर्यमलार्जुनम् यमलार्जुनम्। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, आज भी अनेक जन्मों जंगलों में अर्जुन वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी छाल हृदय व्यथा होने पर डॉक्टरों द्वारा दवाई तैयार करने के काम आती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष होने पर भी चिकित्सा विज्ञान के लिए छाल निकालने पर उन्हें सताया जाता है। जब छाल निकाली जाती पेड़ की तो कष्ट होता है पेड़ को। तो नारद के वचनों को सत्य बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे उस स्थान पर गए जहां दोनों अर्जुन वृक्ष खड़े थे। अब भगवान धीरे धीरे गए, तो पता कैसे गए? धीरे धीरे खड़े होके गए या बैठ करके? हाँ, घुटनों पर रेंगते रेंगते धीरे धीरे वहां पहुंचे। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के दास हैं, तो भक्त ने चूंकि उसको श्राप दिया है, वरदान दिया है, तो उनको तो पूरा करना पड़ेगा, इसलिए अपना धीरे धीरे जा रहे हैं उधर और बंधे हैं उखल से, तो धीरे धीरे उखल भी पीछे पीछे चल रहा है उनके, हैं? वो दास का दास है उखल। भगवान नारद जी के दास हैं, तो धीरे धीरे जा रहे हैं, और उनका दास है, धीरे धीरे वो भी पीछे पीछे जा रहा है उखल भी। तो धीरे धीरे भगवान उन वृक्षों के पास गए। ऋषेर भागवत मुख्यस्य सत्यम कर्तुम बचो हरि जगाम सन के सत्र यत्राताम जमेल अर्जुन। अब भगवान विचार करते हैं, यद्यपि ये दोनों युवक अत्यंत धनी कुबेर के पुत्र हैं और उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, परंतु देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हैं, इसलिए जैसा उन्होंने चाहा अतएव मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। नारद जी चाहते हैं इसलिए मैं करूंगा, नहीं तो भगवान को जरूरत नहीं है इनका उद्धार करने की। जिसको जो नरक में जाना है जाए नरक में, भगवान को क्या जरूरत है। लेकिन चूंकि भक्त से टकरा गए और भक्त ने उनको साथ दे दिया, वरदान दे जो भी दे दिया, अब भगवान बंधे हैं, भक्त के वचन से बंधे हैं, इसलिए भगवान इनका उद्धार कर रहे हैं, नहीं तो भगवान को कोई जरूरत नहीं थी इनका उद्धार करने की। देवर्षि में प्रियतमो यदि मां धनदात्मजो तत्तथा साधयिष्यामि यद्गीतं तन्महात्मनां। हाँ, तात्पर्य प्रभु लिखते हैं कि कोई कितना भी धनी हो, इन भगवान को कोई मतलब नहीं है कि भाई बहुत धनी है इसलिए इनकी इनके लिए कुछ करूं, नहीं। लेकिन नारद मुनि की इच्छा थी कि वासुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन करें, अतः भगवान ने अपने प्रिय भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहा। इस तरह सोचकर कृष्ण तुरंत ही दो अर्जुन वृक्षों के बीच प्रविष्ट हुए, जिससे वह बड़ी ओखली जिससे वे बंधे थे वो तिरछी हो गई और बीच में फंस गई। इत्यंतरे अर्जुनयो कृष्णस्तु यमयोर्ययो आत्मनिर्वेश मात्रेण त्रियंगतम मुलुखलम। पेट से बंधी ओखली को बलपूर्वक अपने पीछे घसीटते हुए बालक कृष्ण ने दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया। अब बालक जैसे चेष्टा करता है वैसे ही कृष्ण चेष्टा कर रहे हैं, मतलब जैसे बालक को पता थोड़ी होता है कि पीछे क्या रुकावट है, तो अपना आगे चलता है और कहीं रुकावट हो रही है तो वो नहीं जानता, वो तो अपनी कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की। जैसे कृष्ण भी जो है ना, वो नहीं सोच रहे हैं कि उखल बंधा है, उखल फंसा है तो कुछ कारण है, और बंधे हुए हैं तो अपना वैसे ही खींचते जा रहे हैं, और नहीं खींच रहा है तो थोड़ा जोर लगा दिया, तो थोड़ा जोर लगा दिया तो दोनों पेड़ गिर गए। अब वो दो पेड़ क्या पुराने थे? पुराने तो थे, लेकिन वो वैसे पुराने नहीं थे कि सूखे हों कि कमजोर हों, वो पुराने थे तो बहुत मजबूत थे। हरा भरा पेड़ जितना पुराना होता उतना ज्यादा मजबूत होता है, अब वो हरे भरे पेड़ थे और 36,000 साल पुराने पेड़ थे, तो सोचो कितने मजबूत होंगे, है ना। लेकिन कृष्ण की थोड़ी सी शक्ति से जो है ना वो उखड़ गए, परम पुरुष की महान शक्ति से दोनों वृक्ष अपने तने पत्ते और टहनियों समेत बुरी तरह से हिले और तल तलाते हुए भूमि पर गिर पड़े। बालेन निष्कर्षेतां गुलूखलं तं दामोदरेण तरसोत्कलितां गिरिबन्धं निश्चेततुः परम विक्रमिताति वेप स्कंध प्रवाल विटपो कृत चंड शब्दो। कृष्ण की लीला दामोदर लीला कहलाती है, ये दामोदर महीने चल रहा है, तो इसी महीने में कार्तिक के महीने में ही ये लीला हुई थी, तो ये सौभाग्य से ये लीला इस समय चल भी रही है, हम लोग पढ़ रहे हैं। जब से कार्तिक शुरू हुआ है तब से ये लीला भी शुरू हुई है। अब हुआ क्या कि कृष्ण अकेले थे, है ना। हाँ, बच्चे साथ में थे, वो खेल रहे थे, लेकिन जो बड़े लोग थे वो तो कोई नहीं थे वहां। तो जिस स्थान पर दोनों अर्जुन वृक्ष गिरे थे वहीं पर दोनों वृक्षों से महान पुरुष अग्नि के समान तेजस्वी निकले, बाहर निकले, और उनका तेज चारों ओर प्रकाशित हो रहा था, दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा था। उन वृक्षों से जो पुरुष निकले, वो पुरुष कौन है? नलकुबर और मणिग्री। उन्होंने नतमस्तक होकर कृष्ण को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर अब वचन कहा, हाथ जोड़कर ये कहा, तत्र श्रिया परमया ककुभास्फुरन्तो सिद्धा वपेति कुजयोरे वेजाते वेदां कृष्णं प्रणम्य शृणक सा शिरसा अखिल लोकनाथं बद्धांजलि विरजसा विजयमोचतुस्मैं। हे कृष्ण, आपकी योग शक्ति अचिंत है, आप सर्वोच्च आदि पुरुष हैं, आप समस्त कारणों के कारण हैं, आप पास रहकर भी दूर हैं और भौतिक सृष्टि से परे हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि आप सर्वे सर्वा हैं, ये विराट विश्व स्थूल और सूक्ष्म रूप में आपका ही स्वरूप है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन तमाद्या पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्त मिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। आप हर वस्तु के नियंता हो, आप हर जीव के शरीर हो, प्राण अहंकार और इंद्रियां हो, आप परम पुरुष हो, अक्षय नियंता हो, विष्णु हो, आप काल हो, कारण हो, तीनों गुणों वाली भौतिक प्रकृति हो, आप इस भौतिक जगत के आदि कारण हो, आप परमात्मा हो, आप हर एक जीव के हृदय की बात को जानने वाले हो। तुम्हें कहा सर्वभूतानां देहा स्वात्मेन्द्रियेश्वर त्वमेव कालो भगवान विष्णुरव्यय ईश्वर त्वं महान प्रकृति सूक्ष्मां रजा सत्तो तमोमयी त्वमेव पुरुषोध्यक्षं सर्व क्षेत्र विकार भी। बात नहीं, आपको शोभा देता है कि यहाँ कथा में बैठ करके बातें कर रहे हैं। हे प्रभु, आप इस सृष्टि से पहले भी विद्यमान थे, आप इस जगत में भौतिक गुणों वाले शरीर में, अतः इस जगत में भौतिक गुणों वाले शरीर में बंदी रहने वाला ऐसा कौन है जो आपको समझ सके। ये बद्ध आत्मा कैसे आपको समझ सके, जब तक आप ना समझाएं तब तक कौन आपको जान सकता है। गुह्यमाणे स्तमग्राह्यो विकारे प्राकृतेर्गुण कौन विहार हति विज्ञातम प्राक सिद्धम गुण समृत। आप ही अपनी ही शक्ति से आच्छादित महिमा वाले हे प्रभु, आप भगवान हो, आप सृष्टि के उद्गम हो, संकर्षण हो, चतुर्व्यूह के उद्गम वासुदेव हो, आप सर्वस्व होने से पर ब्रह्म हो, अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मज्योतय गुणच्छन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, कृष्ण को विस्तार से जानने का प्रयास करने से अच्छा है कि उनको सादर नमस्कार किया जाए, क्योंकि वे हर वस्तु के उद्गम हैं, सर्वस्व हैं। चूंकि हम प्रकृति के गुणों से ढके हैं, अतः जब तक हमारे समक्ष भी प्रकट ना हो तब तक हमारे लिए उन्हें समझ पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए यही स्वीकार करना अच्छा है कि वे सर्वस्व हैं और हम उनके चरण कमलों में क्या करें, चरण कमलों में नमस्कार, हाँ नमस्कार करें। आप मत्स्य हो, कूर्म हो, बराह हो, ऐसे अवतारों में प्रकट होकर ऐसे प्राणियों द्वारा संपन्न ना हो सकने वाले कार्य करते हो, अतएव आपके ये शरीर भौतिक तत्वों से बने नहीं हैं, अभी तो आपके अवतार हैं। आप वही भगवान हो जो अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस जगत के सारे जीवों के लाभ के लिए प्रकट हुए हो। यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेषु शरीरिणः तैस्तैरतुल्यातिशयेन वीर्यैर्देहेषु संगतेन सभवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णो सभागेन साम्प्रतं पतिराशिषाम्। हे परम कल्याण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आप परम शुभ हो। हे यदुवंश के नियंता, हे वसुदेव के पुत्र, हे परम शांत, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। हे परम रूप, हम सदैव आपके दासों के दास हैं, अब आप हमें अपने घर जाने की अनुमति दीजिए। ये तो नारद मुनि की कृपा है कि हम आपका साक्षात दर्शन कर सकें। तो कह रहे हैं हमें अपने घर जाने की अनुमति दीजिए। कहाँ घर है उनका? स्वर्ग में। अनुजानी ही नौ भूमन तबानुम चर किंकर दर्शनम नौ भगवत ऋषेरा सीद अनुग्रह। अब उनकी अंतिम प्रार्थना क्या है ध्यान से सुनिए। क्या प्रार्थना करते हैं? अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, आगे से हम जो कुछ बोलें क्या बोलें आपका गुणगान करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें और कुछ सुने नहीं, हमारे हाथ पांव और इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगें और हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करें, हमारा सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करे क्योंकि हर वस्तु आपका विभिन्न रूप है और हमारी आंखें आपके भक्तों का दर्शन करें। ये प्रार्थना बहुत सुंदर प्रार्थना है। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस तब पादयोर्नहम् स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनुनाम। अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कह रहे हैं, इस तरह दोनों देवताओं ने भगवान की स्तुति की। यद्यपि भगवान कृष्ण सबों के स्वामी हैं और गोकुलेश्वर हैं, किंतु वे गोपियों की रस्सियों द्वारा लकड़ी की ओखली से बांध दिए गए थे, इसलिए उन्होंने हंसते हुए कुबेर के पुत्रों से ये शब्द कहे। अब भगवान हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? कि मैं तो बंधा हूं और तुमको मैंने छुड़ाया है बंधन से और मुझे तुम नहीं छुड़ा सकते हो, मैंने तो तुमको छुड़ाया बंधन से, लेकिन तुम उसको इस बंधन से नहीं छुड़ा सकते हो क्योंकि प्रेम का बंधन बहुत बहुत मजबूत है। इत्थं संकेततस्ताभ्यां भगवान गोकुलेश्वर दामना चोलू खले बद्धा प्रसन्ना है गुई है कौन। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं कृष्ण इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे सोच रहे थे ये दोनों देवता स्वर्ग लोक से इस लोक में गिरे हैं और बहुत समय से वृक्ष रूप में खड़े थे, इन दोनों को मैंने बंधन से छुटकारा दिला दिया, किंतु मैं स्वयं माता की रस्सियों से बंधा हूं, उनकी डांटे सह रहा हूं माता की डांट में सह रहा हूं, इनको तो मैं छुड़ा दिया मुक्त कर दिया, डांट सहता हूं मैं, डांट खाता हूं मैं माता की, बांधा गया हूं मैं माता के। दूसरे शब्दों में कृष्ण शुद्ध प्रेम के बस में जो भक्त द्वारा कई विधियों से प्रशंसनीय है गोपियों द्वारा डांटे जाने को अंगीकार करते हैं, डांट खाते हैं और बांधे जाते हैं गोपियों के द्वारा। अब भगवान क्या कहते हैं? इत्थं संकेततस्ताभ्यां भगवान गोकुलेश्वरः दामना चोलू खले बद्धा प्रसन्ना है गुह्य कौन। भगवान ने कहा परम संत नारद मुनि बहुत कृपालु हैं, भगवान कह रहे हैं कि मेरी कृपा नहीं है उनकी कृपा है, उन्होंने अपने साप से तुम दोनों पर बड़ा अनुग्रह किया है क्योंकि तुम दोनों भौतिक ऐश्वर्य से उन्मत्त होकर अंधे बन गए थे, यद्यपि तुम दोनों स्वर्ग से गिरकर वृक्ष बने थे किंतु उन्होंने तुम दोनों पर बहुत कृपा की, मैं इन घटनाओं को जानता था। भगवान कहते हैं हाँ नहीं तो क्या होता, अगर नारद जी साप नहीं देते तो क्या होता, नरक में जाते यमराज का दंड है ना, तो कोई सोचेगा अरे भाई नारद जी ने तो कृपा नहीं करी उनको माफ कर देते हैं साप क्यों दिया, अगर माफ कर देते तो यमराज के दंड से नहीं बचते है कि नहीं, तो ये जो है ना बहुत कृपा है और भगवान की कृपा मिल गई उनका जो है ना उद्धार हो गया। ज्ञातम मम पुरै वेतन ऋषिना करुणात्मनो श्रीमदांधयोर वाग्भीर विभ्रंसो अनुग्रह कृतः। जब कोई व्यक्ति सूर्य के सामने हो तो उसकी आंखों में अंधेरा नहीं होता। इसी तरह जब कोई व्यक्ति साधु या भक्त के समक्ष होता है तो उसका भाव बंधन छूट जाता है। किसने कहा, कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी तो कह रहे हैं, लेकिन वो भी जो कह रहे हैं उसमें कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं। हाँ, बड़ी मुश्किल से कि एक ने बताया कृष्ण कह रहे हैं और बाकी कोई किसी को पता नहीं चल रहा है कि कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, किससे कह रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। कृष्ण कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? नलकुवर मणुग्रीव से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, जिस प्रकार सूर्य के सामने अंधकार नहीं रहता है उसी प्रकार, हाँ, भाव बंधन नहीं रह सकता है। साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत कृतात्म नाम दर्शनाम भवेद बंधा पुंसोक्षणो सवितुर्यथां। तात्पर्य प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है चैतन्य चरितामृत में, साधु संग सर्व शास्त्रे कहे लव मात्रे साधु संग सर्व सिद्धि है। यदि संयोग बस किसी की साधु अर्थात भक्त से भेंट हो जाती है तो उसका जीवन तत्क्षण सफल हो जाता है और वह भय बंधन से छूट जाता है। अब भगवान कह रहे हैं, हे नलकूबर और मणिग्रीव, अब तुम दोनों अपने घर वापस जाओ, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में सदैव लीन रहना चाहते हो, अतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करने की तुम दोनों की इच्छा पूरी होगी और अब तुम उस पद से कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। स्वर्ग जाओ, इन स्वर्ग से अब नीचे नहीं गिरोगे। ये तो होता क्या है, कोई स्वर्ग में जाता है और फिर गिरता है। गीता में भगवान कहते हैं क्षीण पुण्य मर्त लोकम बिछंती, पुण्य क्षीण जरूर होंगे और फिर गिरेंगे, मनुष्य लोक में फिर से गिरेंगे। लेकिन भगवान के भक्त अगर स्वर्ग में भी जाते हैं तो स्वर्ग से नहीं गिरते, स्वर्ग से फिर ऊपर जाते हैं, भगवान के धाम जाते हैं, है ना। तो ये विशेषता भगवान कहते हैं, तन गच्छतम मत परमं नलकूबर साधनम संजातो मयि भावो वाम ईप्सितः परमो भवः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान ने जब कहा तो वो दोनों देवताओं ने लकड़ी की ओखली से बंधे भगवान की परिक्रमा की। भगवान बंधे हैं और वो छूट गए हैं, इन भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं और उनको नमस्कार किया। भगवान कृष्ण से अनुमति लेने के बाद वे अपने अपने धामों को वापस चले गए। इत्युक्तो तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धो लोकल मा मंत्र जगमतुर्दिश मुत्तराम। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के अंतर्गत यमुनार्जुन वृक्षों का उद्धार शीर्षक दसवाध्याय पूर्ण हुआ। अब ये कार्तिक के महीने में ये जो लीला हुई है दामोदर बंधन, ये हमने पूरी सुनाई है पढ़ करके। अब आगे जो है गोवर्धन धारण लीला, ये भी कार्तिक के महीने में है ना, गोवर्धन पूजा, तो ये भी जो है ना अभी हम सुनेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, जब यमलार्जुन वृक्ष गिर पड़े तो आसपास के सारे ग्वाले भयानक शब्द सुनकर वज्रपात की आशंका से उस, इसने कहा, कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी तो कह रहे हैं, लेकिन वो भी जो कह रहे हैं उसमें कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं। हाँ, बड़ी मुश्किल से कि एक ने बताया कृष्ण कह रहे हैं और बाकी कोई किसी को पता नहीं चल रहा है कि कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, किससे कह रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। कृष्ण कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? नलकुवर मणुग्रीव से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, जिस प्रकार सूर्य के सामने अंधकार नहीं रहता है उसी प्रकार, हाँ, भाव बंधन नहीं रह सकता है। साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत कृतात्म नाम दर्शनान वो भवे बंदा पुंसोक्षणो सवितुर्यथां। तात्पर्य प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है चैतन्य चरितामृत में, साधु संग सर्व शास्त्रे कोई लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। यदि संयोग बस किसी की साधु अर्थात भक्त से भेंट हो जाती है तो उसका जीवन तत्क्षण सफल हो जाता है और वह भय बंधन से छूट जाता है। अब भगवान करें, हे नलकूबर और मणिग्रीव, अब तुम दोनों अपने घर वापस जाओ, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में सदैव लीन रहना चाहते हो, अतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करने की तुम दोनों की इच्छा पूरी होगी और अब तुम उस पद से कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। स्वर्ग जाओ, इस स्वर्ग से आप नीचे नहीं गिरोगे। ये तो होता क्या है, कोई स्वर्ग में जाता है और फिर गिरता है। गीता में भगवान कहते हैं क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंती, पुण्य क्षीण जरूर होंगे और फिर गिरेंगे, मनुष्य लोक में फिर से गिरेंगे। लेकिन भगवान के भक्त अगर स्वर्ग में भी जाते हैं तो स्वर्ग से नहीं गिरते, स्वर्ग से फिर ऊपर जाते हैं, भगवान के धाम जाते हैं, है ना। तो ये विशेषता भगवान कहते हैं, तन गच्छतम मत परमो नलकूबर साधनम संजातो मई भावो वाम ईप्सिता परमो भवः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस प्रकार भगवान ने जब कहा तो वो दोनों देवताओं ने लकड़ी की ओखली से बंधे भगवान की परिक्रमा की। भगवान बंधे हैं और वो छूट गए हैं, इन भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं और उनको नमस्कार किया। भगवान कृष्ण से अनुमति लेने के बाद वे अपने अपने धामों को वापस चले गए। इत्युक्तो तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धो लोकल मंत्र जगमतुर्दिशमोत्तराम। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत यमुनार्जुन वृक्षों का उद्धार शीर्षक दसवाध्याय पूर्ण हुआ। अब ये कार्तिक के महीने में ये जो लीला हुई है दामोदर बंधन, ये हमने पूरी सुनाई है पल करके। अब आगे जो है गोवर्धन धारण लीला, ये भी कार्तिक के महीने में है ना, गोवर्धन पूजा, तो ये भी जो है ना अभी हम सुनेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे महाराज परीक्षित, जब यमलार्जुन वृक्ष गिर पड़े तो आसपास के सारे ग्वाले भयानक शब्द सुनकर वज्रपात की आशंका से उस